चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणारलिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आध्यात्मदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने भावे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानग भक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बार साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देशसज्जनप्रियः भौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्भङ्गोर्मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्रन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवो दश्रालिवे सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान्नासरसारम्भे प्रस्थितः दर्शं वेणोस्वनेर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य नमो नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाध श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुबह हम चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु जब उडुपी पहुंचे तो उडुपी में नर्तक गोपाल इनको देख के प्रेमावेश में मदमग्न होते हुए वो नाच रहे थे। नाचते नाचते पहला उन लोगों ने सोचा ये तो मायावादी सन्यासी है, बाद में उनको पता लगा, कैसे पता लगा, ये वैष्णव है। उनके शरीर में अनेकों दिव्य प्रेम के लक्षण को देख के वो सारे से उड़पी के वैष्णव है, उनको पता लगा कि ये महान वैष्णव है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये जो उड़पी के वैष्णव है उनके अंदर अहंकार है। क्या अहंकार है?
कि वैष्णव तो केवल बहुत अहंकार है. Therefore, smile and began to speak to them as follows. इधर तक हम सुबह किए थे, अभी आगे चैतन्य महाप्रभु हंस के उनके इन वैष्णवों को इस प्रकार कहा. Considering them very proud, चैतन्य महाप्रभु began the discussion. चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार आगे बोलने लगे. तत्वादि आचार्य सब शास्त्र प्रवीण तनार प्रश्न कैले प्रभु अनयन दिना. प्रभु बोलेंगे तत्वादे सब शास्त्र से प्रवीण. हरे प्रभु प्रभु अजदीन तत्ववादे आचार्य तत्प्रभु शास्त्रते प्रवीण. हरे प्रश्नला प्रभु शास्त्रते प्रवीण. तो तत्ववादी आचार्य कैसे थे? शास्त्रते प्रवीण, सारे शास्त्र में प्रवीण, एक्सपर्ट. अभी भी आप देख सकते हैं में कि शास्त्रों में एक्सपर्ट है, खास करके मायावादियों का खंडन करने में, उनको तर्क हराने में एक्सपर्ट रहते हैं. दे वेरी वेरी पावरफुल. कहाँ का कहाँ से इधर कोट करते, कितना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं. मध्वाचार्य ने इस प्रकार उनको ट्रेनिंग दिया है, सो दे आर वेरी एक्सपर्ट. तो शास्त्रों में प्रवीण होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बहुत नम्रता से उन लोगों से एक प्रश्न पूछा. क्या प्रश्न पूछा? यास वन क्वेश्चन. क्या प्रश्न देखते हैं? भालो मते साध्य साधन भालो भालो मते साध्य साधन श्रेष्ठ जान मते साध्य साधन मते साध्य साधन श्रेष्ठ जनन एमते. तो उन्होंने प्रश्न पूछा. क्या प्रश्न पूछा? कि साध्य साधना, सबसे पहले जानिए साध्य क्या है, साधन क्या है. साध्य का अर्थ है साधन के द्वारा जिनको प्राप्त करके उसको साध्य कहा जाता है, यानी गोल. और साधन क्या है? प्रोसेस, जिस मार्ग के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम जिस साध्य को प्राप्त करते हैं उसको साधन कहा जाता है. जैसे हम उड़ी से बंबई जा रहे हैं, साध्य क्या है? बंबई. और साधन क्या है? ट्रेन. समझ गया? वैसे ही साध्य साधना कहते हैं. साध्य साधना हम इतना जानी भालो मते, वो नम्रता से बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है साध्य क्या है, साधन क्या है. इतने महाप्रभु देखिए चतुर तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम, आप जरा बताओ. हाँ, साध्य साधन श्रेष्ठ यार हमारे, आप मुझे एक्सप्लेन करो, आप मुझे वर्णन करो कि साध्य साधन में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है और सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, ये बताओ. अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रश्न रामानंद भाई से पूछा था, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, शास्त्रों का प्रमाण लेके बताओ, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा था. तभी यही देखते हैं कि आगे ये लोग क्या जवाब देते हैं. आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समन्वय. आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समन्वय. आचार्य कहे कृष्ण धर्म कृष्ण समन्वय. कहे कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ साधन. ये है कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ साधन. आचार्य का एक वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समन्वय. कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ साधन. आचार्य ने क्या कहा उधर के आचार्य? कुछ लोगों का मत है कि वादिराज तीर्थ करके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वादिराज तीर्थ नहीं, कोई और आचार्य थे, लेकिन उधर के आचार्य ने उनको कहा, क्या कहा कि वर्णाश्रम धर्म जो है ये श्रेष्ठ हमारे लिए साधन है, और भक्ति के बहुत सारे अंगों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, कृष्ण समन्वय कृष्ण को बीच में रखते हुए करना, ऐसा नहीं कि केवल वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, जवाब तो बराबर किया वो लोगों ने। जैसे रामानंद राय ने सबसे पहला क्या कहा, यही जवाब दिया रामानंद राय, और जैसे रामानंद राय ने शास्त्रों का प्रमाण दिया, वर्णाश्रम समाचार व्रत विष्ट विषय प्रमाण नान्य तत्वोष कारणम, तुमने कहा नान्य तत्वोष कारणम, और कोई रास्ता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार आप उनको सारे कार्यों को अर्पित करते हुए सेवा करो, यही सबसे श्रेष्ठ साधन है करके वो लोगों ने कहा, कौन उड़ुपी के आचार्य, और जैसे उड़ुपी के आचार्य इस प्रकार कहे, आगे देखते हैं और आगे क्या कहते हैं उड़ुपी के आचार्य। पंचविध मोक्ति पाया वैकुंठ गमान, पंचविध मोक्ति पाया वैकुंठ गमान, पंचविध मोक्ति पाया वैकुंठ गमान, राष्ट्र निरूपण शास्त्र निरूपण पंचविध मोक्ति पाया वैकुंठ गमान, साध्य श्रेष्ठ है शास्त्र निरूपण। अभी साधन के बारे में पिछले श्लोक में कहा, साधन क्या है, वर्णाश्रम धर्म कृष्ण को बीच में रखे हुए पालन करना, ये साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ये साधन के द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, पंचविध मुक्ति। कौन कह सकता है पांचविध मुक्ति क्या है, साउज्य सामिप्य सालोक्य सारिष्ट सालोक्य, ये पांच प्रकार का मुक्ति है। पांच प्रकार का मुक्ति प्राप्त करके कहां जाना है, वैकुंठ गमन, वैकुंठ जाना, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन आपको याद होगा जैसे रामानंद राय ने इसी बात को कहा चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु क्या है, हे होय भाई है, हाँ आगे कहो, आर आगे और कहो राय, आगे कहो, ये जो है बाह्य है, बाह्य का अर्थ क्या है, ये शरीर के साथ संबंधित है, वर्णाश्रम धर्म को है वो आत्मा के साथ नहीं ना संबंधित है, ये शरीर के साथ संबंधित है। तो ये जो है ये लोगों ने कहा था ये श्रेष्ठ करके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाद में उसको खंडन करते हैं, कैसे खंडन करते हैं देखते हैं। प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम परम साधन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन, प्रभु को है शास्त्र स्वर्ण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, अच्छा आप जो कह रहे हो वो मेरे लिए स्वीकारनीय नहीं है, क्यों स्वीकारनीय नहीं है, क्योंकि श्रवण कीर्तन जो है साधन मध्य सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्व सर्वोच्च है। रामानंद राय बहुत सारे चीजों को कहते कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को अंत में रामानंद राय ने क्या कहा, इसी बात को कहा, ज्ञाने प्रयास मुदपासनमन्ते जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयमार्तं ताने स्थितं श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिर् ये प्रायशो जितो विजितः तैस्त्रैलोक्यम्। ये श्लोक को उन्होंने उच्चारण कर कहा, स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, यानी जिस जगह बैठे हो उधर ही भगवान का नामों का लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है करके चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ निरूपण किया। उसी बात को चैतन्य महाप्रभु इधर डायरेक्टली उड़पी के सन्यासियों को कह रहे हैं। ये भी कहते हैं कि कृष्ण प्रेम ये प्राप्त करना सर्वोच्च चीज है। आगे हाँ, ये प्रहलाद महाराज के जो श्लोक है वो कोट करते वो कोट करके उन्होंने क्या कहा इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षण। भक्ति का नवलक्षण है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है श्रवण और कीर्तन। हाँ श्रवण कीर्तन कृष्ण हाय प्रेमा, श्रवण कृष्ण ते हाय कृष्ण ते प्रेमा, श्री पंचम पुरुषार्थ और पुरुषार्थेर सीमा। श्रवण कीर्तन हाय कृष्ण हाय प्रेमा, श्रवण कीर्तन काय कृष्ण ते प्रेमा। पुरुषार्थे सीमा, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा ये जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे परे और एक पुरुषार्थ है जिसको पंचम पुरुषार्थ जाना जाता है वो है भक्ति। ये पंचम पुरुषार्थ भक्ति जो है वो क्या है पुरुषार्थ तेर सीमा, ये चारों पुरुषार्थ का सबसे सर्वोच्च है उससे परे है पंचम पुरुषार्थ, वो है भक्ति से प्रेम। आगे जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रेम आवेश हो जाता है लोगों का ये चिंता दिखता नहीं है लोग मुझे क्या सोचते हैं, उन्मादती नृत्यति गाता है जोर जोर से उच्चारण करता है कृष्ण का नाम प्रेमावेश में, वो ये पता नहीं करता कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। ये कोटेशन किया हुआ है श्रीमद् भागवतम से, कौन सा श्लोक है हाँ 11 to 40 4 0। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म निंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म ते कृष्ण मुक्ति प्रेम कबुना, कर्म निंदा कर्म क्या सर्वशास्त्र कहे, कर्म निंदा कर्म त्याग सर्वशास्त्र कहे, कर्म मुक्ति कृष्ण कबुना, कर्म निंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म कृष्ण भक्ति प्रेम कबो नाय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे शास्त्र तो कर्म का निंदा करता है और कर्म त्याग करने का सलाह देता है, और ये कर्म मिश्र भक्ति के द्वारा आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप में इस बात को कहा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर्म का साधन चलेगा नहीं, कर्म मिश्र भक्ति के द्वारा वो भक्ति है भक्ति का अंग है लेकिन सर्वोच्च चीज नहीं, इस प्रकार उन्होंने प्रस्तावित किया। हरे कृष्ण तो ये संस्कृत का श्लोक है। अज्ञान एवं गुणान दोषान, जो व्यक्ति ये कर्म में जो वर्णाश्रम धर्म में अच्छी तरह से उसको ध्यान से देखता है, उसके अंदर बहुत सारे दोष है उसको देख सकता है। और दोषों को देख के क्या करेगा वो व्यक्ति? पूर्ण तरीके से भगवान की शरण लेगा। ए पर्सन हु डज इट इज कंसिडर्ड बी फर्स्ट क्लास मैन। जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म दोष को देख के भगवान का पूर्ण करके शरणागत होता है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इस बात को स्थापना करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने क्या श्लोक कोट किया? भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको चरम श्लोक की गीता कहा जाता है, उसको कोट किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आना, कृष्ण के शरण में आना जाना, ये सर्वोच्च चीज है। और बाद में और श्लोकों को कोट करते हैं। जो कर्म के द्वारा अभी तक संतुष्ट नहीं है और भगवान की भक्ति के प्रति अभी तक उन्होंने रुचि उत्पन्न नहीं किया, भगवान के नाम कीर्तन में रुचि उत्पन्न नहीं किया, तब तक उनको वर्णाश्रम धर्म में पालन नहीं पालन करना है। वर्णाश्रम धर्म को निंदा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जरूर नहीं है। जब तक व्यक्ति को भगवान के नाम कीर्तन में रुचि नहीं है तब तक वो वर्णाश्रम धर्म में उनको पालन करना है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं तो क्या करते हैं? ये पांच प्रकार का मुक्ति को त्याग कर देते हैं, जैसे भक्ति साम्र सिंधु का पहले ही वर्णन किया गया है। क्या है? ये जो धीयमानं गृह्णन्ति विनाय मत्सेवनं जनाः, ये स्वामी पिया सारी के भी प्रकार के मुक्ति है। ये मुक्ति भगवान देना चाहते हैं भक्तों को, लेकिन देने पर भी क्या करते हैं? भक्त लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो श्लोक इधर कोट किया गया है, सालोक्यस्य सामीप्य सारूप्यैकमप्यता दीयमानं गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। भक्त साम्र सिंधु का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भागवत से कोट किया गया है। बाद में जो एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत महाराज के प्रसंग में और एक श्लोक होता है श्रीमद् भागवतम में, वो है भौतिक जो सुविधाएं हैं और ऐश्वर्य हैं उसको त्याग करना बहुत मुश्किल है। पुत्रों को धन को ये सब त्याग करना बहुत मुश्किल है। भरत महाराज ने क्या किया? इन सब चीजों को त्याग करके शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया और उन्होंने क्या किया? मुक्ति को भी तुच्छ समझ के वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया। जब मुक्ति को ही भक्त लोग तुच्छ समझते हैं तो भौतिक चीजों की क्या कहना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक को कोट किया जाता है श्रीमद् भागवत में, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं। नारायण पर सर्वे न कुतश्चन विभ्यति सर्वावर्ग नरकेषु कुल्यार्थनिन दर्शिनः। पर्सन इज डेवल इज डिवोटेड लॉर्ड नारायण, जो नारायण के भक्त होते हैं वो कभी किसी तरीके से किसी से भी डरते नहीं है। उनको ना स्वर्ग जाने का इच्छा रहता है ना मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा कर रहता है। वो क्या कहते हैं, वो हर चीज को समान दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये सब श्लोकों को खुद करके इतने महाप्रभु उनको क्या कहते हैं, मुक्ति कर्म द्विवस्तु त्यजे तगान, मुक्ति कर्म द्विवस्तु त्यजे भक्तगान, तुम्हें साध्य साधन, मुक्ति कर्म वस्तु त्यय कर्म, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन तत्ववादी सन्यासियों को कि मुक्ति और कर्म को भक्त लोग क्या करते हैं, और आपकी मूर्खता क्या है, आपने ये साध्य साधन के रूप में इन दोनों को स्वीकार किया, मुक्ति को साध्य के रूप में और कर्म को साधन के रूप में स्वीकार किया है। तो मैंने अभी तक जो श्लोकों कोट किया उससे पता लगता है कि आप लोग गलत हो। सन्यास देखिया मोरे करे वांछा, सन्यास देखिए मोरे कर वांचन, ना करियते किय सत्य साधन लक्ष्य, ना कोइलते किय सत्य साधन लक्ष्य, सन्यास देखिए मोरे कर वांचन, लक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तत्ववादी आचार्य सुनो, आप मुझे एक सन्यासी समझ के आप एक प्रकार का डुप्लिसिटी आप क्या कर रहे हो, वांछन कर रहे हो, आप मुझे छल कर रहे हो, नहीं आप जो है यू नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब द प्रोसेस इन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे भावुकता वाला सन्यासी हूँ, मुझे वगैरह कुछ मालूम नहीं है, आप मुझे उल्लू मत बनाओ, इस प्रकार आप मुझे वांछन मत करो। आप क्या करो, आपको खुद को नहीं मालूम कि साध्य साधन क्या होता है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उन सबको एकदम धनाधन भाटा। निदत्ताचार्य हैला अंतरे रज्जित, निदत्ताचार्य हैला अंतरे लज्जित, प्रभुर वैष्णवत की हैला लज्जित, सुनिदत्ताचार्य हैला अंतरे लज्जित, सुनिदत्ताचार्य हैला अंतरे लज्जित, प्रभु रे वैष्णवता देखी अंतर्जित, प्रभु रे वैष्णवता देखी अनिल विस्मित। तो इधर के जो तत्वाचार्य है प्रभु के इतने महाप्रभु के वाणी सुन के अंदर ही अंदर लज्जित हो गए, अंदर ही अंदर क्या हो गए, वो शर्मा गए, अरे क्या है, क्या श्लोकों को कोट कर रहा है, क्या सिद्धांत को बता रहा है, हमको तो मालूम नहीं, अंदर अंदर लज्जित हो गए, देर फीलिंग शाई, हम तो बेशरम है। हाँ भागवत में सारे श्लोकों को कोट किया ना, हाँ वो सब कोट करने के बाद ही निराकरण में आए मुख्य कर्म। तो अंदर ही अंदर वो लज्जित हो गए, शर्मा गए, एक दूसरे को देख रहे क्या है क्या करे। बाद में प्रभु का वैष्णवता देखी सब विस्मित हो गए, वैष्णव है लेकिन वैष्णव होने का गर्व उनके पास था, तत्वाचार्य के पास, तत्वाचार्य सन्यासी के पास, महान वैष्णव है, लेकिन प्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है उसको देख के सब लोग विस्मित हो जाते हैं। हम भी जब गए थे वही तो अनुभव किया हमने, वो लोग इतने बड़े पंडित है, विद्वान है, उनके सामने तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा कीर्तन जब चला सब लोग लज्जित हो गए और साथ साथ में विस्मित हो गए। वाह, आपने देखा उधर के सन्यासी ऐसे कर रहे थे, वाह। वैष्णव तो हमारा परिणाम से आधारित है, कोई चीज से आधारित नहीं है। हाँ अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि लोगों को बोलेंगे मुक्ति तुच्छ है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी को बोलेंगे कि भौतिक भोग तुच्छ है उतना लगता है क्या ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि लोगों का कलयुग जैसा आगे बढ़ता है लोगों का जो मन है केवल भौतिक आसक्ति भौतिक इंद्रिय भोग में लगता रहता है और मुक्ति क्या है उसको मालूम ही नहीं है। इसलिए जब हम पहला प्रचार करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना आपका जीवन का लक्ष्य है, वही तो बात है ना। क्यों हम बोलेंगे मुक्ति कुछ है, ठीक है हमको मुक्ति चाहिए नहीं, वही बोलेंगे। सबसे पहले लोगों के मन में डालना है आपको मुक्ति प्राप्त करने के, फिर से वापस जन्म लेना ये जीवन का लक्ष्य है, बताएंगे कि नहीं। उसके बाद जब साधन के विषय में आएंगे, साध्य के विषय में आएंगे, कृष्ण प्रेम के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। पहले जमाने में लोगों को ऐसी धारा थी पहले से ही कि हमको मुक्ति प्राप्त करना है, ये भौतिक भोग तुच्छ है करके बच्चा बच्चा को मालूम था, अभी वो स्थिति नहीं रहा। इसलिए पहले की जो आचार्य है भगवत गीता के ऊपर पहला श्लोक पहला अध्याय के ऊपर कमेंट्री नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या जरूरत देने, क्या क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय पहला अध्याय का सार यह है कि संसार दुखा और अशाश्वत है, और स्वाभाविक तरीके से उस समय के समाज में लोगों को मालूम था ये बात। लेकिन अभी मुक्ति क्या है वही नहीं मालूम, हम बोले मुक्ति कुछ है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको मालूम ही नहीं कि क्या है तो उसको कुछ बोलेंगे तो क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ऐसा का एक आइटम है आपने खाया नहीं, आपको मालूम ही नहीं क्या है, उसको बोलो कुछ बोलो कुछ है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय लोगों को मालूम था मुक्ति क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना, वैसे लोगों को बोलोगे तुच्छ है या मुक्ति तुच्छ है भक्ति श्रेष्ठ है तो उस समय लोगों का असर पड़ता है। तो इधर जो लोग हैं सचेतन महाप्रभु किनसे बात कर रहे हैं, सन्यासियों से बात कर रहे हैं जो पूरा जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए लगा दिया है, और उनको मुक्ति तुच्छ है भक्ति श्रेष्ठ है बोलने में कुछ मीनिंग है। और वही चीज बम्बई में कोई कॉलेज में बोलोगे हम भी यही सोचते हैं मुक्ति कुछ है। अच्छी बात है आपने मुक्ति कुछ है, हम जो कर रहे हैं उसमें लेकिन तो ये ऑडियंस कौन है उसके ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु किन से बात कर रहे हैं, तत्ववादी, वो पूरा जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए लगा दिया, उनको ये बताना है कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, इस बात को बताने के लिए उन्होंने कुछ कहा कि नहीं। लेकिन आपका ऑडियंस कौन है, भौतिकवादी व्यक्ति, उसको मुक्ति तुच्छ करके बोलना नहीं चाहिए, हमारे लिए भी ऐसे ही है, हमारे लिए भी, हमारे मन में जब तक भोग की प्रयास है भोग की लालसा है बार बार यही करना है फिर वह वापस जन्म नहीं लेना, लेकिन जब राग मार्ग में पहुंचेंगे तब तो भक्ति श्रेष्ठ है, अपने लिए भी यही बोध है। जब तक हमारा भौतिक भोग है, हाँ, कृष्ण के प्रति कृष्ण दर्शन लालसा नहीं हुआ है, तब तक हमको वापस जन्म नहीं लेना। वो तो उससे तीव्रता आती है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा इसी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इधर साध्य साधन मध्य श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ साधन क्या है, श्रेष्ठ साध्य क्या है, उसके बारे में चर्चा चल रहा है। ठीक है, डिस्कशन जो हो रहा है बहुत हाई क्लास लोगों के बीच में हो रहा है, लो क्लास लोग नहीं है, रास्ते में जो है उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। सौ रुपये के जो सन्यासी है, अभी के जो सन्यासी 500 साल पहले कैसे होंगे देखो, उनका स्टैंडर्ड क्या हुआ रहेगा देखो, उनका जो तेज, उनका 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 जो प्रवाह है, उनका जो शास्त्र का ज्ञान है, विचार है, कैसे रहेगा उनके साथ, इतने में हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सत्ताचार्य, हाँ सत्वाचार्य, आचार्य कहे तुम्हें से कहो से सत्य है, आचार्य कहे जय कहे तुम्हें से सत्य है, सर्वशास्त्र वैष्णव ये सुनिश्चय, आचार्य कहे तुम्हें जय कहे से सही है, सर्वशास्त्र वैष्णव सुनिश्चय। तत्ववादी आचार्य के भले उनके पास इतना अहंकार है वैष्णवता का, जब शास्त्रों का प्रमाण से जीतने में आपने स्थापित किया तो सत्ववादी आचार्य ने क्या कहा, आप जो कह रहे हो वो सत्य है और सारे शास्त्रों का कहना यही सत्य है, सारे शास्त्रों का सार भी यही है, उन्होंने स्वीकार किया, ज्यादा तर्क नहीं किया। अभी ये जो चर्चा हो रहा है बहुत हाई क्लास लोगों के बीच में हो रहा है। अभी हमारे पास कोई आके अगर कहे आप लोग जो बोल रहे हो गलत है, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, सब कुछ आएगा। अभी ये देखना चाहिए किन के साथ बातचीत हो रहा है, नॉट वेरी ऑर्डिनरी पीपल, ऑलमोस्ट वो शुद्ध है, हृदय से शुद्ध है। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा, आप जो कह रहे वो सही बात, ये सारे शास्त्रों का सार है, लेकिन फिर भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों मालूम है, अगले श्लोक, तथापि माधवाचार्य ये कोई निबंधन, तथापि माधवाचार्य कोरी आचे निबंधन, आचार्य संप्रदाय संबंध, से आचार्य सबे संप्रदाय संबंध, करी आचे निर्बंध, से आचार्य सबे संप्रदाय संबंध। तो इधर आचार्य कहते हैं आगे, आप जो कह रहे हो सही है, सत्य है, सारे शास्त्रों का सार है, लेकिन जो मध्वाचार्य ने जो हमको बताया है वही चीज को हमारा पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा संप्रदाय का संबंध है ना। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते पार्टी पॉलिसी, पार्टी पॉलिटिक्स। अब इस पार्टी के है तो हमको मानना पड़ेगा। तो इधर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानने को मिलता है, संप्रदाय के साथ अगर जुड़े रहते हैं, अगर आपका संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा हुआ है तो जब तक आचार्य के संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हो तब तक उसके अनुगत में रहना हमारा कर्तव्य बनता है। तो लोगों ने स्वीकार किया, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन हम जो पालन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मध्वाचार्य जो कहा है हम उनको पालन कर रहे हैं। लेकिन आगे इसका बात वर्णन नहीं है, इसके ऊपर लोगों का कहना है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा मध्वाचार्य का जो सिद्धांत यह नहीं है, मध्वाचार्य ने शुद्ध भक्ति का स्थापना किया है, लेकिन आप जो है आपके आचार्य का भी पालन नहीं कर रहे हो। मध्वाचार्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप में श्रवण कीर्तन का वर्णन हुआ है और भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ स्थापना किया है, लेकिन पब्लिकली नहीं किया है, खुलेआम स्पष्ट रूप में नहीं किया है। यही है, इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मध्वाचार्य के सिद्धांत में कुछ कमी है, कमी नहीं है, लेकिन उनका जो सिद्धांत ये किसी पर जोर नहीं देता, उसको स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया, यही ठीक है। हाँ हाँ, उसको प्राधान्यता नहीं दे रहे, उसको महत्व नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये है। प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीन, प्रभु कहे तुम ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारे संप्रदाय देखी दुई चिन्ह, प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारे संप्रदाय देखे तुम्हें दी चिन्ह, प्रभु को दुई भक्ति हीन, तुम्हारे संप्रदाय देखे ए दुई चिन्ह। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में क्या कहा, ने कहा कि ये कर्मी और ज्ञानी होते हैं ये दुई भक्तिहीन, इनके पास कोई भक्ति नहीं होता। अभी ये कर्मी ज्ञानी कौन है, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति वालों को कह रहे हैं, ये कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति वालों के पास किस प्रकार का भक्ति नहीं रहता है, प्रेम भक्ति नहीं रहता है, उनके पास भक्ति रहता है लेकिन प्रेम भक्ति नहीं रहता है। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मायावादी और तत्ववादी जो है कर्मी है ज्ञानी है, नहीं, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन हो रहा है इधर। और भक्तिहीन किस प्रकार का भक्तिहीन है, उनके पास प्रेम भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी भक्ति नहीं है, है लेकिन प्रेम भक्तिहीन, और साथ साथ में तुम्हार संप्रदाय देखी यही दुई चिन्ह, ये तुम्हार संप्रदाय में सब चैतन्य महाप्रभु उसी संप्रदाय में दीक्षा ली है और बाद में क्या करते हैं, तुम्हार संप्रदाय कैसे आप इस्कॉन में रहते हो, इस्कॉन में सब कुछ हो, यात्रा में आते सब कुछ, बाद में कुछ तकलीफ हुआ समझ लो, कृपा सिंधु क्या कहता है, अरे आपके इस्कॉन में तो ऐसे होता है। कौन, हाँ दामोदर देव प्रभु ऐसा कहा था, इस्कॉन में ही तकलीफ है तुम लोगों के इस्कॉन में, इसका अर्थ क्या है। हाँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इसका कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को एक अलग संप्रदाय के रूप में स्पष्ट रूप में घोषणा किया है। ही एक्सप्लेन्ड इट, हरे कृष्ण, निंदा नहीं किया, इज नॉट, इन्होंने निंदा नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम्हार संप्रदाय इस रूप में स्पष्ट रूप में ऐसा बातचीत होता है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय मध्य संप्रदाय से अलग है, अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए छठ गोस्वामी गणों ने इतना सारा ग्रंथों को रचना किया कि इन ग्रंथों को अगर कोई पढ़ता है अध्ययन करता है, कोई अन्य वैष्णव संप्रदाय का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ भक्त है, उनके अंदर इस प्रकार की भावना है, हमको हम तो मध्य संप्रदाय के हैं, हम तो थोड़ा रामायण संप्रदाय में टच है, तो उनका भी कुछ सहारा लेना होगा, कोई जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू। इसका अर्थ यह नहीं कि उनको निंदा करेंगे, उनमें से जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करेंगे। एक बार एक भक्त गए थे भक्तिनोद ठाकुर के पास, उन्होंने पूछा भक्तिनोद ठाकुर से कि सिख संप्रदाय के साथ हमारा क्या संबंध है, तो भक्ति ठाकुर ने जवाब दिया, श्री चैतन्य प्रेम मंदिर रामानुज संप्रदाय भक्ति स्वरूप, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो प्रेम का मंदिर है, प्रेम मंदिर किसके ऊपर बनाया, रामायण संप्रदाय का जो फाउंडेशन है, भित्ति स्वरूप करके, भित्ति का अर्थ क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन ऊपर, नींव के ऊपर उन्होंने बनाया, तो फाउंडेशन है, लेकिन हमारा जो अलग, लेकिन तत्व के हिसाब से, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से हमारा संबंध बहुत हद तक किसके साथ है, मध्य संप्रदाय के साथ है। और थोड़ा सा प्रेम भक्ति के जो सिद्धांत है, बहुत सारा संबंध हमारा निम्बार्क साथ, निम्बार्क के साथ है, निम्बार्क संप्रदाय के साथ में है, लेकिन फिर भी हमारा जो मूड है वो भी निम्बार्क ही नहीं है, वो स्पेशल मूड है, उसके बारे में हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दिवस उस समय चर्चा करते हैं। रम्या उपासना व्रजवधु वर्गेन महाकल्पिता, ये जो है वो कोई आज तक नहीं दिया है, अनर्पित चरण चनात कारुण्य अवतरण कलो। अगर चैतन्य महाप्रभु ये बात नहीं कहते तो चैतन्य महाप्रभु का जो अनर्पित चरण चनात विफल हो जाता। अगर हम मध्य संप्रदाय के हैं तो मध्वाचार्य ने पहले कह चुके हैं अनर्पित चरण चनात कहां से हुआ, अनर्पित चरण चनात सत्य है तो ये तुम्हार संप्रदाय भी सत्य है। ठीक है, सभी एक गुण देखे तुम्हार संप्रदाय, सभी एक गुण देखे तुम्हार संप्रदाय, सत्य विग्रह करे ईश्वर कर निश्चय, सब एक गुण देखे तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह करे ईश्वर कर निश्चय, सब एक गुण देखे तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह कर ईश्वर निश्चय। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप में कहा, इधर आपके जो संप्रदाय है, तुम्हार संप्रदाय में एक सुंदर गुण है, एक महान गुण है, देयर इज वन वेरी गुड क्वालिटी, ये सभी लोग देख रहे हैं या सभी लोग देख सकते हैं, हमने देखा भी, क्या है वो, विग्रह को सत्य मानना, यानी तुम्हें प्रतिमा नहीं, साक्षात व्रजेंद्र नंदन, तो आप प्रतिमा नहीं हो, कौन हो, साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात व्रजेंद्र नंदन स्वयं कृष्ण हो, इस बात को ग्रह सत्य सत्य है, ये कृष्ण है, तो फोटोग्राफ दिखाए, कहाँ है फोटोग्राफ है, सबको दिखाए, बहुत सुंदर फोटोग्राफ है, और खास करके सब लोग जाके कुंदा सिंह को दिखाने हैं फोटोग्राफ। सब देखिए ध्यान पूर्वक देखिए ये फोटोग्राफ, सब लोग ध्यान पूर्वक देखिए, ये श्लोक के साथ ये फोटो का संबंध है, जल्दी जल्दी लक्ष्मी बरा, लड्डू गोपाल करो, ये श्लोक के साथ उसका ये फोटो के साथ संबंध है। ठीक है, आगे चलिए। चुन्न करे मद तारे गर्व चुन्न करे अंग तीर्थ तारे आई लगोर हरे फाल्गु तीर्थ चले आयला गौर हरे, तो इस प्रकार इन वैष्णवों का जो गर्व है उनको तोड़ के चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु फल्गु तीर्थ पे पहुंचे। फल्गु तीर्थ जो है तो आगे गोकर्ण के पास पड़ता है, तो वो तो दक्षिण भारत की यात्रा का विवरण है। अगर चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत का यात्रा का पूरा लेक्चर सुनना है, चंडीगढ़ में मैंने दिया था, वो आप शास्त्र स्वरूप प्रभु से आप वो लेक्चर लेके सुन सकते हो। ये लेक्चर्स इंग्लिश में है, पूरा दक्षिण भारत की यात्रा का। हाँ हाँ चैतन्य चरितामृत में गुरु तत्व का अच्छी तरह से वर्णन है। एक होता है एक गुरु है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही है लेकिन शिक्षा गुरु कितने हैं, अनेकों हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा गुरु अनेक क्यों हैं, क्योंकि आपने किसी से कुछ शिक्षा लिया, वो जितना शिक्षा देना था दे दिया, बाद में कोई और आपको शिक्षा देगा, कोई और आपको शिक्षा देगा। प्रगति जो है शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा जो है आपका सर्टिफिकेट है कि आप कृष्ण दास हो, कृष्ण के देव सेवा में हमेशा संलग्न रहो। और संलग्न रहने का प्रेरणा, कृष्ण की सेवा में हमेशा युक्त रहने का प्रेरणा आप दीक्षा गुरु से प्राप्त करते हो। ठीक है, लेकिन शिक्षा को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है उसका शिक्षा जनरली शिक्षा गुरु से लिया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण से दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुसार दीक्षा शिक्षा अलग अलग होता है। जैसे जीव गोस्वामी के अंडर में श्रीनिवास आचार्य, नृत्यनाथ ठाकुर और श्यामानंद, ये तीनों जीव गोस्वामी के शिष्य थे नहीं, ये सब अपने अपने गुरु के आदेश के अनुसार जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए आए। जैसे दीक्षा गुरु को अगर पिताजी के रूप में माना जाए, पिताजी एक बच्चे को एक स्कूल में भेजते हैं, वो स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक ही है, उसके बाद क्या करते हैं पिताजी, वो बच्चे को कॉलेज में भेजते हैं। हाँ, कॉलेज में दूसरा टीचर है, दूसरा स्कूल है कि नहीं। हाँ, तो ये पिताजी है लेकिन अनेकों टीचर, वो पिताजी भी वास्तविक में टीचर ही है, जो हमारा चाहते हैं, जो जानते हैं कि ये 10th स्टैंडर्ड हो गया, अभी इसको इधर भेजो, अभी इसको इधर भेजो। तो ये सही बात है, मेरा जितना अनुभव है उतना ही दूसरों को मैं दे सकता हूँ, मेरा जितना साक्षात्कार है उतना ही दूसरों को मैं दे सकता हूँ, उससे बढ़कर एक इंच भी एक पाई भी नहीं दे सकता हूँ। 10th स्टैंडर्ड का स्कूल है, 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट 10th क्लास होने के बाद वही प्रिंसिपल आके बोलेगा ये कॉलेज अच्छा है उसमें जाओ, इनको आपको इधर और अच्छा शिक्षा मिल रहा है जाओ। ये भौतिकता में इतना स्पष्ट रूप में खुला है, तो आध्यात्मिक जीवन में वो इतने स्पष्ट रूप है, वेरी क्लियर। शिक्षा गुरु तो पिताजी है, तो इसलिए पिताजी के आज्ञा के अनुसार हम जिस स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, शिक्षा गुरु के आज्ञा के अनुसार शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए। जनरली सिस्टम ये है, जब वो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग नहीं है, तो शिक्षा गुरु ही शिक्षा देते हैं। हृदय विद्याभूषण सबसे पहला शिक्षा लिए थे मध्य संप्रदाय में, बाद में जब उनका संपर्क हुआ रूप सनातन की शिक्षाओं के साथ, जीव गोस्वामी की शिक्षाओं के साथ उनका संपर्क हुआ, विश्वनाथ शरीफ ठाकुर से उन्होंने सीखा, तब उन्होंने फिर वापस गौड़िया में दीक्षा लिया। तो कुछ ऐसे लोगों का मत है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अन्य वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लिया तो इधर दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बलदेव विद्याभूषण प्रमाण है कि मध्य संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद फिर वापस गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा लिया। गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा का महत्व तो ज्यादा नहीं, शिक्षा का ज्यादा महत्व है। जैसे शिक्षा संप्रदाय प्रगति शिक्षा के द्वारा होता है, दीक्षा संबंध स्थापना करने मात्र तक है, उसके बाद शिक्षा। ठीक है, और कोई एनी मोर क्वेश्चंस? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बराबर पूछो। हाँ, उनका प्रश्न है, महाप्रभु कर्म त्याग की बात कर रहे हैं लेकिन गीता में कहते हैं कि नहीं क्षण कर्म कृत आवश्यक कर्म, तो कर्म करना ही चाहिए। तो महाप्रभु कर्म त्याग के बारे में कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्लोक कोट करते भागवतम से, जहाँ लिखा गया है जब तक श्रवण कीर्तन में आसक्ति नहीं उत्पन्न हुआ तब तक वर्णाश्रम धर्म को कर्म करना चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है कर्म के बारे में जो तीसरे अध्याय में कहते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक कृष्ण नाम में अभी तक रुचि नहीं हुआ है, श्रवण कीर्तन में पूर्ण तरीके से रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है, वो स्तर में नहीं है, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन है। जैसे अलग अलग स्तर के भक्तों का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्रश्न क्या है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। जैसे तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को त्याग किया, रामानंद राय के संवाद में उसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि वो जो है उसको मना कर दिया, इसको पालन मत करो, नहीं, सर्वश्रेष्ठ क्या है वो प्रश्न है। मैं सर्वश्रेष्ठ में नहीं हूं तो मैं क्या करूं, मुझे लोअर इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस हायर लोअर होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं जो योगा रुरुक्ष है उसके लिए कर्म कारण उचिते, योगा रूढ़ है उसके लिए क्या है, वही कर्म त्याग जो है वो उसके लिए साधन है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बराबर, हाँ, वो उस लेवल के लोगों को अलग अलग लोगों के लिए, व्होएवर इट इज ऑन लेवल उसके लिए। ठीक है, हाँ, मेरे लिए कोई प्रश्न कठोर नहीं है। बैंक में ये मैंने कब किसको कब कहा था मुझे याद नहीं, आप जरा याद दिलाओ तो बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट जो होता है ना समय काल परिस्थिति के अनुसार होता है। वो पूरा बताओ तो बताऊंगा। हाँ, वो पता नहीं तो पूरा पता करके बताओ। हाँ, क्या बोला, कौन से प्रसंग में बोला था? आपने डायरेक्टली सुना प्रत्यक्ष प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा मैंने कब कौन से प्रसंग में किसको क्या कहा था, किस विषय में कहा था। हाँ 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 मुझे याद है, अभी याद दिलाया। अभिनव प्रभु ने कहा था कि प्रभु जी इधर बंदे में ऐसा ड्रामा होना चाहिए, इस प्रकार ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि फिलोसॉफिकल इसका आंसर देता हूँ। ये जो समाज को आकर्षित करने के लिए कल्चर की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? कल्चर, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम की आवश्यकता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को निर्वहन करने के लिए, एक समाज में इस प्रकार लोगों को आकर्षित करने के लिए हमारा समृद्धि होना चाहिए। जहां आर्थिक समृद्धि है उधर सामाजिक व्यवस्था अपने आप बन जाता है। तो मैंने कहा कि हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए बैंक में है तो आपको कोई खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप संगीत में रुचि रख सकते हो, गाने में रुचि रख सकते हो। जब आपको हर महीना प्रेशर है कि 4 लाख रुपए लेके मंदिर को चलाने के लिए भागना है, आप कौन सा संगीत सीखोगे, आप कौन सा ड्रामा प्रैक्टिस करोगे? है कि नहीं? कोई आएगा नहीं। इसलिए जैसे मध्य संप्रदाय में इधर भले ही वो फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि 2 साल में चलाने के लिए 8-10 करोड़ रुपए लगता है, तो अपने आप आ जाता है और है। इतना बड़ा जमीन है, इतना संपत्ति है। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए धन की आवश्यकता है। धन के बिना धर्म का प्रचार नहीं होता है। पूरा भारत में बौद्ध धर्म का स्थापना किस वजह से हुआ? बुद्ध की वजह से नहीं हुआ, अशोक उस राजा ने पूरा आलिंगन किया। तो जब तक आर्थिक सहयोग नहीं रहता है तब तक आप कितना भी सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत भी क्यों ना हो, प्रचार नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि लोगों को समाज में अगर भक्ति को स्थापना करना है, हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है। अगर आप उधर बैठ के वेदांत सूत्र का क्लास लोगे, कितने लोग बैठेंगे? कोई नहीं आएगा। आपको ड्रामा करना है, संगीत करना है, लोगों को आकर्षित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है। आपको अगर मान लो कोई गरीब है तो उसको शादी के लिए व्यवस्था प्रदान करना है, उसको अगर कोई व्यक्ति है तो बाहर नौकरी कर रहा है, 15 घंटा नौकरी कर रहा है, जपा नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसा नौकरी आप दिलाना चाहिए जो 8 घंटा नौकरी करे, बाकी 2 घंटा जपा करे, तो व्यवस्था आप दे सकते हो, हमारे मंदिर दे सकता है? तो खोखला है। जब तक पैसा नहीं, मंदिर खोखला जाओ प्रचार के। बाकी आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, चंडू भी कर सकते हैं, लेकिन समाज में लोगों के हृदय में भक्ति को इंस्टॉल करना है, यू हैव टू रिक्वायर मनी, यू नीड मनी, आपके लिए जरूरत नहीं है। हाँ तो खोखला तो है ही। हाँ सिर्फ फिर क्या, आपको केस बनाना है, लोगों को बुलाना है, प्रसाद खिलाना है, और हर बार कैसे सोचेगा? तो मैंने कहा मंदिर बनने के बाद चंद्र प्रभु आप देखो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि हमको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैनेजमेंट मतलब ये है। प्रभुपाद जी ने कहा, एक जगह गए थे, बड़ा फेस्टिवल का आयोजन कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव एनफ मनी, तो लेकिन नो नो प्रभुपाद, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट यू आर? तो आर्थिक फाइनेंस फॉर कल्चरल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ, फॉर कल्चरल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ के लिए यू नीड टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।